हरिश्चंद्र जी कल की कथा तक चंडाल के घर बेच दिए गए 1 अरब सोने की मुद्रा में, और वो बेचा है विश्वामित्र जी ने। ये कथा क्यों कही गई थी? जैमिनी ऋषि ने ये पूछा था कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो कौन थे जो मारे गए, जिनका विवाह भी नहीं हुआ था। तो बताया कि वो 5 विश्वेदेव थे जो विश्वामित्र जी की इस क्रूरतापूर्ण बात को देखकर आपस में बोल रहे, कैसा ये ऋषि है, कितना पापी है, बेचारे हरिश्चंद्र को कैसा दुख दे रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे थे आपस में। विश्वामित्र जी ने उन्हीं को श्राप दिया, जाओ तुम मनुष्य शरीर में चले जाओ, मेरी निंदा करते हो, मैं इतना बड़ा तपस्वी, जो कुछ चाहे जो कुछ करूं, मेरी ताकत है, तुमने ऐसा कैसे कह दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा, महाराज गलती हो गई कि अच्छी कोई बात नहीं, तुम्हारा जन्म तो होगा पर तुम इस संसार के झंझट में नहीं पड़ोगे, शादी करना विवाह करना इसमें नहीं पड़ोगे, तुम छूट जाओगे। तो वो ही थे ये। जैमिनी ने कहा कि तो अधूरी कथा बताई विश्वामित्र जी की, तब वो पूरा चरित्र हरिश्चंद्र की पूरा चरित्र बता रहे हैं। 1 अरब सोने की मुद्रा में विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र को चंडाल को बेच दिया। हरिश्चंद्र जी चंडाल के पास नहीं जा रहे, विश्वामित्र जी का, मैंने इसे 1 अरब सोने की मुद्रा ले ली है, तू मेरा दास हो गया, मैं इसके पास बेचता हूं, जा। वो ये सोच रहे थे कि देखो अब क्या करें, राज्य भी चला गया, भाई बंधुओं का त्याग, पत्नी और पुत्र का भी विक्रय, और अंत में देखो चंडाल की प्राप्ति हुई। एक के बाद एक दुख आता गया, कैसी परंपरा हो रही, ऐसे मन में सोच रहे थे। हरिश्चंद्र जी चंडाल के घर में रहते हुए प्रतिदिन अपने प्रिय पुत्र तथा अनुकूल पत्नी का स्मरण किया करते थे। अपना सर्वस्व छिन जाने के कारण राजा अंदर से बड़े व्याकुल थे। कुछ काल के बाद हरिश्चंद्र चंडाल के वेश में होने के कारण श्मशान घाट पर मुर्दों के कपड़े अर्थात कफन संग्रह करके वे इसी काम में रख दिए गए। चंडालों जैसा ही रूप बनाकर रहते थे मशान में। हरिश्चंद्र को उस चंडाल ने आज्ञा दी, जाओ तुम मुर्दों के आने की प्रतीक्षा में रात दिन वहीं रहो, जो भी मुर्दा लाया जाए उसका कफन इकट्ठा करो। यह आदेश पाकर राजा काशीपुरी के दक्षिण श्मशान में बने हुए शव मंदिर में गए। उस श्मशान में बड़ा भयंकर शब्द होता था, सैकड़ों सियारने डरावनी आवाजें लगाती रहती थी। उस श्मशान में चारों ओर मुर्दों की खोपड़ियां बिखरी पड़ी थी। सारा श्मशान दुर्गंध से भरा हुआ था। अत्यंत धूम से वो आच्छादित रहता था। श्मशान में पिशाच, भूत, बेताल, डाकनी और यक्ष रहा करते थे। गिद्धों और गीदड़ों से वो स्थान भरा रहता था। झुंड के झुंड कुत्ते उसे घेरे रखते थे। यत्र तत्र हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। सब ओर से बड़ी दुर्गंध आती थी। अनेकों मृत व्यक्तियों के बंधु बांधुओं के करुण क्रंदन से वो श्मशान भूमि बड़ी भयानक और कोलाहलपूर्ण रहती थी। कोई कहता हा पुत्र, कोई कहता हे मित्र, कोई कहता हे भाई, कोई कहता हे मेरे बंधु, हे प्रियतम, हे पतिदेव, हाय बहन, हे माता, हे मामा, हे पितामह, हे मातामह, माता में मन नाना, हे पिताजी, हे मेरे पौत्र, हे मेरे बांधव, कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना मेरा जीना बड़ा मुश्किल, लौट आओ। ऐसे ऐसे करुणापूर्ण विलाप हर वक्त सुनने को मिलते थे और ये रोने वाले बहुत जोर जोर से रोते थे। ऐसी भूमि में निवास करने के कारण राजा न तो रात में सो पाते थे और न दिन में सो पाते थे, बार बार हाहाकार मचता रहता। इस प्रकार उनके 12 महीने सो वर्षों के समान बीत गए। अंत में राजा ने दुखी होकर देवताओं की शरण ली और कहा, महान धर्म को नमस्कार, जो सच्चिदानंद स्वरूप संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले विधाता परात्पर ब्रह्म, अत्यंत शुद्ध निर्मल पुराण पुरुष और अविनाशी उन भगवान विष्णु को नमस्कार। देव गुरु बृहस्पति तुम्हें नमस्कार, हे इंद्र तुमको नमस्कार। अंदर से ये बोलते बोलते राजा चंडाल के कार्य में लग जाते थे। एक दिन की बात है, महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी शैव्या सांप के काटने से मरे हुए अपने बालक को गोद में उठाए विलाप करती हुई उस श्मशान भूमि में आई। वो बार बार कहती थी, हे मेरे पुत्र, हे मेरे एकमात्र पुत्र, हा वत्स, हे शिशु, ऐसी चिल्लाती चिल्लाती आ रही थी। उसका शरीर बड़ा दुर्बल हो गया, उसके शरीर की कांति मलिन पड़ गई, मन बेचैन हो गया, सिर के बालों में धूल जम गई। शैव्या के विलाप को सुनकर के राजा हरिश्चंद्र तुरंत उसके पास गए, क्योंकि उनको आशा थी कि जो भी कोई मुर्दे को लेकर आई है उसका कफन तो मिलेगा ना, और वो जब जोर जोर से रो रही थी तो पहचान नहीं सके कि ये मेरी ही पत्नी है, कारण कि दोनों में कई समय बीत जाने के कारण दूरी हो गई, दुखों के अंदर शरीर बदल गया, रूप रंग बदल गया। शैव्या का पहले कैसे सुंदर मस्तक था, कैसे सुंदर केश थे, अब तो वो केश ही और ढंग के हो गए। पहले उसका शरीर बहुत सुंदर था, अब वो काला पड़ गया, सूखे हुए वृक्ष के समान जान पड़ती थी। इधर शैव्या ने भी अपने पति को नहीं पहचाना, क्योंकि उसके पति सर्वांग सुंदर परंतु वे एक चंडाल के रूप में ऐसे सड़े गले वस्त्र पहने हुए एकदम काले कलूटे, उसको अपने पति की पहचान नहीं, पति को अपने पत्नी की पहचान नहीं। राजा ने काले कपड़े में लिपटे हुए बालक को, जिसने सांप काट लिया था तथा जिसके अंगों में राजव चिन्ह दिखाई देते थे, देखा तो बड़ी चिंता हुई। वो सोचने लगा, अरे देखो विधाता की कैसी गति है, इस बालक के चिन्ह तो कैसा लगता है कि किसी राजा का पुत्र है, राजा के कुल में उत्पन्न हुआ है, परंतु ये काल सबसे महान है, ये किसी और ही दशा को बिचारा प्राप्त हो गया, सांप ने इसको डस लिया और सांप के जहर से ये मर गया। अपनी माता की गोद में पड़े हुए इस बालक को देखकर मुझे मेरे कमल के समान नेत्रों वाला अपना पुत्र रोहिताश्व याद आ रहा है। ओहो, यदि उसे भयंकर काल ने अपना ग्रास नहीं बनाया होगा, अर्थात यदि रोहिताश्व जिंदा होगा तो वो मेरा लाडला भी इसी उम्र का रहा होगा, उसके इसकी एक उम्र लगती है। इधर रानी जोर जोर से विलाप कर रही है, हे बेटा, किस पाप के कारण से मुझे दुख उठाना पड़ रहा है, मेरे दुखों का कभी अंत नहीं हो पा रहा है, जब से मेरे दुखों का प्रादुर्भाव हुआ तब से मेरा दुख दिन दूना रात चौगुना होता जा रहा है, हे प्राणनाथ, हे मेरे पतिदेव, आपको भी मैं कहां देखूं, ओ विधाता, तूने राज्य का नाश किया, हमारे परिचित लोगों से वियोग करवाया, सब कुछ हमने सहन किया, मैं भी बिक गई, और हे विधाता, तूने मेरे बेटे को भी बिकवा दिया, परंतु विधाता, तुमसे एक बात जानना चाहती हूं, मेरे पति राजर्षि हरिश्चंद्र की कोई और ज्यादा तो दुर्दशा नहीं करवाई है, मेरे पति हरिश्चंद्र तो अब नीचे की स्थिति में नहीं गए होंगे ना। रानी की ये बात सुनकर अपने पथ से भ्रष्ट हुआ राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्राण प्यारी पत्नी तथा मृत्यु के मुख में पड़े हुए पुत्र को पहचान लिया और मन में सोचा, हो ये तो मेरा ही पुत्र है और यह शिव्या मेरी ही पत्नी है। यूं कहते हुए दुख से संतप्त होकर रोते 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 मूर्छित हो गए। इधर रानी आई, रानी ने देखा, आप मेरी अवस्था पर विलाप करने वाले कौन है, मेरे पर बहुत संकट आए, उस समय में आपने विलाप नहीं किया, आप मेरे संकट में आप विलाप करते, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पर राजा तो मूर्छित थे। शेब्या ने विचार किया कि मेरी इस अवस्था से ये मूर्छित हो रहे हैं, इसका मतलब ये शायद मेरे पति ही हो सकते हैं। बस जब उसको इस बात का ज्ञान हो गया और लक्षण देख लिए, अरे ये मेरे पति है, धड़ाम से पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर गई, उसका शरीर निश्चेष्ट हो गया। थोड़ी देर बाद होश में आने पर महाराज और महारानी दोनों शोक के भार से पीड़ित हुए विलाप करने लगे। राजा ने कहा, हे बेटा, तेरे कैसे सुंदर नेत्र थे, कैसी सुंदर भौंहें थी, कैसा सुंदर तुम्हारा मुखमंडल था, और आज तुम्हारी ये दशा देखकर मैं जीवित बैठा हूं। हे बेटा, तुम मेरे अंग प्रत्यंग में उत्पन्न तथा मन को और हृदय को आनंदित देने वाले थे, किंतु मैं तुम्हें एक ऐसा दुष्ट पिता मिला जिसने तुम्हें एक साधारण वस्तु की भांति बेच दिया। इस दुर्भाग्य रूपी सर्प ने सब प्रकार के साधन और वैभव से पूर्ण मेरे महान राज्य का अपहरण करके मेरे पुत्र को भी काट खाया है। मनुष्य के जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक उसकी बड़ी बड़ी आशाएं भी उसको जीने में सहायता देती हैं, परंतु मृत्यु के बाद तो कुछ कर ही नहीं सकता है। मेरे दुर्भाग्य रूपी सर्प से डसे हुए अपने पुत्र के मुखमंडल को देखते हुए भी मैं इस समय उसके भयंकर विष के प्रभाव से अंधा हो रहा हूं। आंसू बहाते भी गदगद कंठ से यूं कहकर राजा ने बालक को उठाकर छाती से लगाया और फिर वे जमीन पर गिर गए। रानी बोली, ओ वही नरश्रेष्ठ जान पड़ते हैं, केवल स्वर से ही पहचान हो रही है, मेरे पति हैं, इनमें तनिक भी संदेह नहीं कि विद्वत जनों के हृदय रूपी चकोर को आह्लादित करने वाले चंद्रमा के समान मेरे महाराज हरिश्चंद्र तो यही है, किंतु ये श्मशान में क्या कर रहे हैं? अब सेव्या अपने पुत्र शोक को तो भूल गई और पति की दुर्वस्था को देख करके और ज्यादा दुखित हो गई। पति और पुत्र दोनों की चिंता से पीड़ित, विस्मित और दीन हुई रानी जब पति की दशा का निरीक्षण कर रही थी, उस समय उसकी दृष्टि अपने स्वामी के उस दंड पर पड़ी जो बहुत ही घृणित एवं चंडाल के धारण करने योग्य था। एक ऐसा डंडा देखा, ये चंडाल, उसका रूप, बेहोश होकर गिर गई। फिर धीरे धीरे चेत हुआ तो पूछा, हे देव, हे दुर्भाग्य, तूने देवता के समान कांतिमान इस महाराज को चांडाल की दशा में पहुंचा दिया, तूने इनके राज्य का नाश किया, सुरिदों का त्याग करवाया, स्त्री पुत्र का विक्रय करवाया, फिर भी इन्हें नहीं छोड़ा, आखिर इनको भी चांडाल बना ही दिया। हे राजन, आज मैं आपके पास छत्र, झारी, चमर, व्यजन कुछ भी नहीं देख रही हूं। विधाता का कैसा ये विपरीत भाव, पहले जिनके आगे आगे चलने पर कितने ही राजा सेवक बनकर अपनी चादरों से धरती बुहार लेते थे, वे ही महाराज अब दुख से पीड़ित हो इस अपवित्र श्मशान भूमि में विचर रहे हैं, जहां खोपड़ियों से सटे कितने ही मिट्टी के घड़े चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जहां मृतकों की लाश से चर्बी गलगल करके पृथ्वी के सूखे दोनों में पड़ रही है, चिता की राख, अंगारे, अधजली हड्डियां और मज्जा के ढेर से यहां की भयंकरता बढ़ गई है, ऐसों के बीच में रह रहे हैं, गीधों, गीदड़ों, कुत्तों के बीच रह रहे हैं, चिता के धुएं से सारी दिशाएं काली हो रही, यहां ये हमारे पति बैठे हैं। सेव्या रो पड़ी और शोक से पीड़ित होकर विलाप करते हुए अपने पति से कहने लगी, महाराज, ये स्वप्न है कि या सत्य है? हे महायशस्वी, आप इसे जैसा समझते हो बताइए, मेरा मन अचेत हो रहा है, मुझे कह दीजिए कि ये स्वप्न है, अपने तो महल में रहने वाले हैं। रानी की बात सुनकर हरिश्चंद्र ने गरम गरम सांस लेते हुए गदगद वाणी से अपने को चंडाल होने की पूरी कथा सुनाई। मैं चंडाल नहीं होना चाहता था, परंतु विश्वामित्र जी ने इस चंडाल से चंडाल को एक चंडाल से 1 अरब सोने की मुद्रा ले ली, मुझे अपना दास बनाकर कहा कि तुम इसके दास बनो, मेरी आज्ञा है क्योंकि तुम मेरे दास हो चुके हो। तब से मैं चंडाल बन गया हूं। राजा रानी को बड़ा दुख हुआ और उसने गर्म सांस खींचते हुए बहुत देर तक रोने के पश्चात अपने पुत्र की मृत्यु की यथार्थ घटना निवेदित की। मेरा ही पुत्र है, हे मेरे पुत्र, मैं मरता और मेरी मृत्यु पर तू विलाप करता, ये बात लोक में भी अच्छी लगती, पर मेरा दुर्भाग्य कि तेरी मृत्यु पर मैं रो रहा हूं। प्रिय, अब मैं अधिक दिन तक जीवित रहकर क्लेश नहीं भोग सकता, पर मेरा अभाग्य, मेरी आत्मा भी मेरे अधीन नहीं, तुम मेरे अपराधों को क्षमा कर देना। प्रिय, मैं आज्ञा देता हूं तुम ब्राह्मण के घर चली जाओ, मैं राजपत्नी हूं महाराज, इस अभिमान में कभी मत रहना और कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, उस ब्राह्मण की सेवा करते रहना, तुम दासी हो तो दासी रहोगी ऐसा ही समझना, क्योंकि जो हमको पालने वाला होता है वो देवता के समान होता है। रानी बोली, हे राजर्षि, मुझसे भी अब ये दुख का भार नहीं सहा जाता है, अतः मैं चिता की जलती हुई अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूं। राजा ने कहा, पतिव्रते, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, मेरा काम तो यहां मुर्दों को जलाने का है, इसलिए चाहे किसी का भी बेटा हो उसको चिता पर रखना, उस मुर्दे को जलाना मेरा काम है। राजा ने चिता बनाकर चिता पर अपने पुत्र को रख दिया और अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़ करके सबके ईश्वर परमात्मा नारायण श्री हरि का स्मरण किया, जो भगवान सबके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है तथा जिनका नाम वासुदेव सुरेश्वर आदि अंतरहित ब्रह्म कृष्ण पीताम्बर ऐसे अनेक नाम जिनके माने गए हैं उनका चिंतन किया, उनके इस प्रकार भगवत स्मरण करने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता धर्म को अगवा बनाकर तुरंत वहां आए और कहने लगे, राजन सुनो सुनो, ठहरो, हमारी बात सुनो, तुम्हारे स्मरण करने पर संपूर्ण देवता यहां उपस्थित हो गए हैं। देखो हरिश्चंद्र, ये साक्षात पितामह ब्रह्मा जी हैं। सुनो, ये भगवान धर्म है, इनके सिवा साध्यगण, विश्वेदेव, मरुदगण, लोकपाल, इन सब को देखो, अपने वाहनों सहित सब पधारे हैं। नाग है, सिद्ध है, गंधर्व है, रुद्र है, अश्विनी कुमार है, और भी बहुत से देवता यहां उपस्थित हैं। साथ ही बाबा, इन विश्वामित्र जी को भी देखो। तत्पश्चात धर्म ने कहा, महाराज, अपने आप तो प्राण त्यागने का कोई धर्म नहीं होता ना। प्राण मत त्यागो, प्राण त्यागना कोई धर्म नहीं है, प्राण त्यागने का साहस भी मत करो, ये बात मन में भी मत लाओ। मैं साक्षात तुम्हारे पास आया हूं, तुमने अपने क्षमा, इंद्रिय संयम तथा सत्य इत्यादि गुणों से मुझे संतुष्ट किया है। इंद्र बोले, महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र तुम्हारे पास आया हूं, तुमने स्त्री पुत्र के साथ सनातन लोकों पर विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया है, पत्नी और पुत्र को साथ लेकर स्वर्ग लोक की ओर चलो, जिसने तुमने अपने शुभ कर्मों से प्राप्त किया है तथा ये हर किसी दूसरे मनुष्य को अत्यंत दुर्लभ होते हैं। इसके बाद इंद्र ने चिता के ऊपर आकाश से अमृत की वृष्टि की, जो अकाल मृत्यु का निवारण करने वाली है। फिर फूलों की वर्षा हुई, फिर देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, जोर जोर से वज्र, जोर जोर से ये दुंदुभियां बजने लगी। वहां एकत्रित हुए देवताओं के समाज में महात्मा राजा का पुत्र रोहिताश्व चिता से जीवित हुआ, और वैसा का वैसा सुंदर शरीर और वैसा ही उसका रूप, वैसा ही वो पूर्ण स्वस्थ अपने चिता से उतरकर लफक कर अपनी मां से मिला, पिता से मिला। हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को छाती से लगाया, और इधर उनकी स्त्री पूर्ववत तेज से और कांति से संपन्न हो गई, और उनका भी देह अत्यंत तेजस्वी बन गया। वही दिव्य हार वस्त्र जो राजा के समय पहना करते थे, सब उनके शरीर पर आ गए। अब राजा स्वस्थ एवं पूर्ण मनोरथ हो परम आनंद में मग्न हो गए। इंद्र ने कहा कि महाराज, आप स्त्री और पुत्र के सहित उत्तम गति को प्राप्त होने वाले हैं, अतः अपने कर्मों के फल भोगने के लिए आप दिव्य लोक को चलो। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, मैं अपने स्वामी चांडाल की आज्ञा लिए बिना तथा उसके ऋण से उद्धार पाए बिना देव लोक को नहीं चल सकूंगा, क्योंकि ये मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है कि जिसका भी कर्जा उसके पास है, उसको कर्जे को यदि नहीं दिया है तो उसको दिव्य लोक नहीं मिल सकता। अतः मैं पहले उसके पूरे कर्जे को चुकाना चाहता हूं। धर्मराज बोले, किसका कर्जा? कि चांडाल का। वो चांडाल जानते हो कौन है? वो चांडाल मैं ही हूं, मैंने ही ये किया है, कोई चांडाल नहीं है। इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र, पृथ्वी के समस्त मनुष्य जिस परम धाम के लिए प्रार्थना करते हैं, न जाने कितना कितना उपाय करते हैं, तुम तो केवल एक अपने कर्तव्य पालन से उस धाम को बड़े आसानी से प्राप्त कर लिए। हरिश्चंद्र बोले, महाराज, हे देवराज इंद्र, मैं आप सबको बड़े आदर के साथ नमस्कार करता हूं, मेरा ये वचन सुन लीजिए, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अतः विनीत भाव से आपके सामने मैं कुछ निवेदन करता हूं। अयोध्या के सब मनुष्य मेरे विरह शोक में डूबे हुए हैं, आज मैं उन्हें छोड़कर यदि दिव्य लोक में जाऊंगा तो क्या एक राजा का एक धर्म निभेगा? ये राजा का धर्म है। ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या, गाय की हत्या और स्त्री की हत्या, इन सब के समान ही भक्तों के त्याग करने का भी महान पाप बताया गया है। जो दोष रहित एवं त्यागने के अयोग्य भक्त पुरुष को त्याग देता है, उसे इस लोक और परलोक में कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए हे महाराज इंद्र, आप स्वर्ग को लौट जाइए। यदि अयोध्यावासी मेरे साथ स्वर्ग में चल सके तब तो मैं चलूंगा, नहीं तो मैं नरक में जाना अच्छा मानता हूं। आप पधारो। इंद्र ने कहा, राजन ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सबके अलग अलग कर्म है, अलग अलग पाप है, अलग अलग पुण्य है, तो उनको उनके कर्मों के अनुसार मिलेगा। तुम उनके कर्मों के बीच में क्यों आते हो? तुम तो अपने स्वर्ग का साधन देख लो और चले जाओ, तुम्हारे लिए क्या बाधा है? हरिश्चंद्र बोले, इंद्र राजा अपने कुटुंबियों के प्रभाव से ही राज्य भोगता है। यदि प्रजा न हो तो राजा किस काम की? प्रजा भी तो राजा का एक कुटुंबी है ना, उन्हीं के सहयोग से राजा बड़े बड़े यज्ञ करता है, कुएं बावड़ी खुदवाता है, बगीचे लगवाता है। ये सब कुछ मैंने अयोध्या वासियों के प्रभाव से किया है, इसलिए मैं किसी लोभ में पड़कर और स्वर्ग के लोभ में पड़कर मैं अपने उपकारियों का त्याग नहीं कर सकता हूं। हां देवेंद्र, यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, दान किया हो, यज्ञ किया हो, जप का अनुष्ठान यदि हुआ हो, उन सब का फल यही चाहता हूं कि उन सब के साथ मुझे वही मिले जो सबको मिलने वाला है, उसमें उनका समान अधिकार है। त्रिभुवनपति इंद्र आए वे वहां धर्म, और इस कथा के परम संयोजक गाधी नंदन विश्वामित्र इन सब बातों को सुनकर बहुत बहुत प्रसन्न हुए। लोगों पर अनुग्रह रखने वाले देवेंद्र ने स्वर्ग लोक से भूतल तक करोड़ों विमानों का तांता लगा दिया, और फिर चारों वर्णों और आश्रमों से युक्त अयोध्या नगर में प्रवेश करके राजा हरिश्चंद्र के समीप देवराज इंद्र ने कहा, हे अयोध्या की प्रजाओं, तुम सब लोग शीघ्र से शीघ्र चले आओ, और धर्म के प्रसाद से तुम सब लोगों को अत्यंत दुर्लभ स्वर्ग लोक में जाना है, इन विमानों में विराजमान हो जाओ और स्वर्ग की ओर चलो। इंद्र की ये बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र की प्रसन्नता के लिए महातपस्वी विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को परम रमणीय अयोध्यापुरी में ला करके वहां उसका राज्य सिंहासन पर अभिषेक कर दिया। देवताओं मुनियों सिद्धों के साथ रोहिताश्व का राज्याभिषेक करके राजा सहित सभी बंधु बांधव बहुत प्रसन्न हुए, और उसके बाद वहां के सब लोग अपने पुत्र भृत्य और स्त्रियों सहित स्वर्ग लोक को चले गए। वे पग पग पर एक विमान से दूसरे विमान जा पहुंचते थे। विमानों सहित ही अनुपम ऐश्वर्य पाकर महाराज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए। स्वर्ग में नगर के आकार वाले सुंदर विमान में, जिनके अंदर परकोटे भी थे, एक बीच में सिंहासन पर महाराज हरिश्चंद्र विराजमान हुए। उनकी ये समृद्धि देखकर सब शास्त्रों के तत्व को जानने वाले दैत्याराज, दैत्याचार्य महाभाग शुक्राचार्य ने इस प्रकार यशोगान किया, वाह क्षमा का कैसा महात्म्य, दान का कितना महान फल। ये आज हरिश्चंद्र अमरावतीपुर में आए और इंद्रपद को प्राप्त हुए हैं। उन चारों पक्षियों ने कहा, जैमिनी जी, ये राजा हरिश्चंद्र का सारा चरित्र हमने आपको बता दिया है। कोई दुख में पड़ा हुआ मनुष्य इसका श्रवण करता है तो वह महान सुख को प्राप्त होता है। उसके मन में एक दृढ़ आत्मविश्वास जगता है कि कितने भी संकट आ जाए मनुष्य को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इसके श्रवण से पुत्रार्थी को पुत्र, सुखार्थी को सुख और दूसरी राज्य की इच्छा रखने वालों की अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार वस्तुएं मिलती हैं। संसार में उसकी विजय होती है और वो कभी नरक में नहीं जा सकता। जैमिनी ने पूछा, हे पक्षियों, प्राणियों की उत्पत्ति और उनका लय कहां होते हैं? मुझे इस विषय में संदेह है। मेरे प्रश्न के अनुसार आप लोग इसका समाधान करें। जीव कैसे जन्म लेता है, कैसे मरता है, किस प्रकार गर्भ में पीड़ा सहकर माता के उदर में निवास करता है, फिर गर्भ से बाहर निकलने पर वो किस प्रकार बुद्धि को प्राप्त होता है और मृत्यु काल में किस तरह चैतन्य स्वरूप के द्वारा शरीर से अलग होता है। सभी प्राणी मृत्यु के पश्चात पुण्य और पाप दोनों का फल भोगते हैं, किंतु वे पुण्य और पाप किस प्रकार अपना फल देते हैं, ये सारी बातें मुझे बताओ जिससे मेरा ये सब संदेह दूर हो जाए। वे पक्षी कहने लगे, हे जैमिनी जी, आपने हम लोगों पर बड़ी कृपा की है, इतने बड़े प्रश्नों का हमारे पर भार रख दिया, इसकी कहीं तुलना नहीं है। इस विषय में एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूं, सुनिए। पूर्व काल में एक परम बुद्धिमान भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनके सुमति नाम का एक पुत्र था। वह बड़ा ही शांत और जड़ रूप में रहने वाला था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद, जनेऊ मिल जाने के बाद उस बालक से उसके पिता ने कहा, बेटा तुम सभी वेदों को क्रमशः आद्योपांत पढ़ो, गुरु की सेवा में लगे रहो और भिक्षा के अन्न का भोजन करो। इस प्रकार ब्रह्मचर्य की अवधि पूरी करके फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, वहां उत्तम उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान करो और अपने मन के अनुरूप संतान प्राप्ति करो। उसके बाद वन की शरण ले लो और वानप्रस्थ के नियमों का पालन करने के पश्चात कोई वस्तु आदि अपने पास मत रखो, सबका त्याग करके सन्यासी हो जाओ। ऐसा करने से उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी जहां जाकर मनुष्य सब प्रकार के शोक चिंताओं से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अनेकों बार कहने पर भी सुमति, क्योंकि वो तो जड़ था, मूर्ख था, कुछ बोलता तो था नहीं, अंदर से समझदार, ऊपर से बोलता नहीं था, मूर्ख की तरह रहता था। पिता भी प्रेम के कारण से उसको बार बार ये बातें समझाया करते थे। उन्होंने पुत्र प्रेम के कारण मीठी वाणी में अनेक प्रकार से उसको लोभ भी दिखाया। बार बार कहने पर एक दिन सुमति ने हंस करके कहा, पिताजी आज आप जो उपदेश दे रहे हैं इसका मैंने बहुत बार अभ्यास किया है, इसी प्रकार दूसरे दूसरे शास्त्रों और भांति भांति की शिल्प कलाओं का भी सेवन किया है। इस समय मुझे अपने 10,000 से भी अधिक जन्म स्मरण आ रहे हैं। मैं कोई दिखता हूं इतनी आयु का थोड़ा ही हूं, 10,000 बरस से अधिक तो मुझे जन्म का स्मरण आया है, 10,000। खेद, संतोष, क्षय वृद्धि उदय ये तो मैंने बहुत देखे, शत्रु मित्र पत्नी का संयोग पत्नी का वियोग मुझे बहुत देखने को मिले। मुझे कोई कम माता पिता मिले, अनेक प्रकार के माता पिता मिले, और मैंने हजारों बार सुख और दुख भोगे हैं। कितनी बार स्त्रियों के विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में मैंने निवास किया है, सैकड़ों प्रकार के रोगों की भयानक पीड़ाएं सहन की है। मेरा कोई यही जीवन है? गर्भावस्था में मैंने जो अनेक प्रकार के दुख भोगे हैं, बचपन के दुख भोगे हैं, जवानी के दुख भोगे हैं, बुढ़ापे में जो मैंने क्लेश सहन किए हैं, वे सब मुझे आज ज्यों के त्यों याद हैं। पिताजी, कभी मैं ब्राह्मण बना, कभी क्षत्रिय बना, कई बार वेश्य बना, कई बार शूद्र योनि में गया, कई बार अंत्यजों में गया, फिर पशुओं में भी गया। शायद ही कोई पशु योनि होगी, शायद ही कोई कीट योनि होगी, शायद ही कोई पक्षी योनि होगी जिसमें मैं कभी न गया हो। कभी कभी तो मैं इतने विशाल भूमंडल का राजा भी रहा था। मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। इसी तरह अब की बार आपके घर में भी मैंने जैसे पहले जन्म लिया था, अब की बार भी ले लिया। मैं बहुत बार मनुष्यों का गुलाम रहा, दास रहा, कभी स्वामी रहा, कभी बहुत बड़ा धनी था, कभी एकदम दरिद्री रहा। कभी मैंने कितना ही दान दिया और कभी मैंने कितनी बार दान लिया। पिता माता सुहृद भाई स्त्री इत्यादि के कारण कई बार मैं संतुष्ट हुआ और कई बार मैं दीन होकर रोते रोते आंसुओं से अपना मुंह धो लेता था। पिताजी, इस संसार को छोटा मत मानो, यूं ही इस संसार चक्र में भटकते हुए मैंने अब वह ज्ञान प्राप्त किया है जो इस संसार के चक्र से हटाने वाला है, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर अब यह ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेदोक्त समस्त क्रियाकलाप गुण शून्य दिखाई देने के कारण मुझे ये आपकी बातें अच्छी नहीं लगती है। जब जिसको जानना चाहिए वो जान लिया तो अब मुझे वेदों से क्या मतलब। अब तो मैं गुरु विज्ञान से परित्रिप्त निरी और सदा आत्मा हूं। मैं जन्म सत्ता वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन छह प्रकार के भाव विकारों से रहित हूं। मैं सुख दुख हर्ष राग संपूर्ण गुणों से वर्जित उस परम पद ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। पिताजी, जो राग हर्ष भय उद्वेग क्रोध अमर्ष और वृद्धावस्था से प्राप्त है तथा कुत्ते मृग आदि की योनि में बांधने वाले सैकड़ों बंधनों से युक्त है, उस दुख की परंपरा का त्याग करके अब मैं महान आनंद के अंदर चला जाऊंगा। पुत्र की बात सुनकर महाभाग पिता का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने हर्ष और विस्मय से गदगद वाणी से अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम ये क्या कहते हो? तुम्हें ये कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ? पहले तुम में जड़ता क्यों थी? पहले तुम बोलते ही नहीं थे और आज बोलने लगे तो तुम थकते ही नहीं हो, और ऐसी ज्ञान की बात कहते हो? तुमको ये ज्ञान कहां से मिला? क्या ये ऋषि मुनियों का या देवताओं का कोई शाप था कि इतने दिन तक तुम्हारे अंदर ज्ञान छिपा सा दिखता था और अब ये प्रकट हुआ है? तुम मुझे इसका रहस्य सुनाओ, इतने दिन तुम जड़ की तरह क्यों थे और अब तुम कैसे इतनी बड़ी ज्ञान की बात करते हो? बेटा, तुम पर जो कुछ भी बीता हुआ है वो मुझे बताओ। पुत्र ने कहा, पिताजी जो बीत गया सो तो बीत गया, बीत जाने को क्यों याद करना, अब तो आगे की तरफ देखना चाहिए। नहीं पुत्र, तुम्हारी बातों में बड़ा रहस्य है, मुझे बताओ। तो पिताजी, मेरा जो ये सुख और दुख देने वाला पूर्व वृत्तांत है वो मैं तो आपको सुनाता हूं। पूर्व काल में मैं परमात्मा के ध्यान में मन लगाने वाला एक ब्राह्मण था। आत्मविद्या के विचार में मैं पराकाष्ठा को पहुंच गया था। मैं सदा योग साधना में संलग्न रहता था। निरंतर अभ्यास में लगने के कारण, सत्पुरुषों का संग करने के कारण, अपने स्वभाव से ही बार बार जो ब्रह्म का विचार करने के कारण, तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के विचारने और तत्पदार्थ के संशोधन करने आदि के कारण उस परमात्म तत्व में मेरी परम प्रीति हो गई। फिर मैं शिष्यों के संदेह का निवारण करने वाला एक आचार्य बन गया। फिर मैं बहुत समय के बाद एकांत सेवी हो गया, किंतु दैवात अज्ञान से सद्भाव का नाश होने के कारण प्रमाद में पड़कर मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु काल से लेकर अब तक मेरी स्मरण शक्ति का लोप नहीं हुआ। मेरे जन्मों के जितने वर्ष बीते हैं उन सब की स्मृति मेरे अंदर हो जाती है। पिताजी, पूर्व जन्म के अभ्यास से ही जितेंद्रिय होकर अब फिर भी मैं वैसे ही यत्न करूंगा जिससे भविष्य में मेरा जन्म होवे ही नहीं। मैंने जो दूसरों को ज्ञान दिया था उसी का ये फल है कि मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो रहा है। केवल कर्मकांड में ही लगा रहने वाला इन बातों को नहीं जानता। अतः मैं इस प्रथम आश्रम से ही संन्यास धर्म का आश्रय लेकर एकांत में आत्मा के उद्धार के लिए प्रयत्न करूंगा। अतः हे महाभाग, आपके हृदय में जो संदेह है आप उसको बताइए, मैं उसका समाधान करूं। इतनी सी सेवा से भी आपकी प्रसन्नता का संपादन करके मैं पिता के ऋण से मुक्त होना चाहता हूं। पक्षियों ने कहा कि हे जैमिनी जी, तब पुत्र की बात पर श्रद्धा रखते हुए पिता ने उससे वो बात पूछी जो आपने अभी संसार में जन्म करण के विषय में इत्यादि के विषय में पूछी है। वही प्रश्न किया और वो पुत्र है, वो इनका आगे जवाब देंगे। राम